नमस्कार। प्रेमचंद की कालजयी रचनाएं इस श्रृंखला में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है गुल्ली डंडा, जिसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद और उसको स्वर दिया है श्रीमती शन्नो अग्रवाल ने।
कविताओं, कहानियों, गीतों, गजलों का नायाब ब्लॉग, लॉग ऑन करें www.hindyugm.com। हिंदी युग में अपनी बात अपनी भाषा में।
हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या ना माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखता हूँ तो जी लोट पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूं। ना लॉन की जरूरत, ना कोर्ट की, ना नेट की, ना थापी की। मजे से किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और दो आदमी भी आ जाए तो खेल शुरू हो गया। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उसके सामान महंगे होते हैं। जब तक कम से कम एक सैकड़ा ना खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो पाता। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है, पर हम अंग्रेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से अरुचि हो गई है। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। अंग्रेजी खेल उनके लिए हैं जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों ये व्यसन मरते हैं? ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, दिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता? अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। ये अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। वो प्रातः काल घर से निकल जाना, वो पेड़ पर चढ़कर टहनियां काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वो उत्साह, वो खिलाड़ियों के जमघट, वो हराना और हारना, वो लड़ाई झगड़े, वो सरल स्वभाव जिससे छूत अछूत, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें अमीराना चोचलों की, प्रदर्शन की, अभिमान की गुंजाइश ही न थी, ये उसी वक्त भूलेगा जब अरे घरवाले बिगड़ रहे हैं। पिताजी खाने पर बैठे बेग से रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकार में भविष्य टूटी हुई नौका की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि हराने में मस्त हूँ। ना नहाने की सुधि है, ना खाने की। गुल्ली है तो जरा सी, पर उसमें दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। हाँ, तो मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा, दुबला, बंदरों की सी लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों की सी चपलता, वही छल्लाहट। गुल्ली कैसी ही हो पर इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। जिसकी तरफ वो आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका दौड़कर स्वागत करते थे और अपनी अपनी टोलियां बना लेते थे। एक दिन मैं और गया दो ही खेल रहे थे, वो हरा रहा था, मैं हार रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि हराने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पर हार जाना 1 मिनट का भी अखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित ना होने पर भी क्षम्य है, लेकिन गया अपना दांव लिए बगैर मेरा पिंड ना छोड़ता था। मैं घर की ओर भागा, अनुनय विनय का कोई असर ना हुआ था। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा तान कर बोला, मेरा दांव देकर जाओ, हराया तो बड़े बहादुर बन के, लेकिन हारने के समय क्यों भागे जाते हो? मैंने कहा, तुम दिन भर हराओगे तो क्या मैं दिन भर हारता रहूंगा? गया बोला, हाँ तुम्हें दिन भर हारते रहना होगा। मैंने कहा, ना खाने जाऊं ना पीने जाऊं? गया बोला, हाँ मेरा दांव दिए बिना कहीं नहीं जा सकते। मैं बोला, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? गया बोला, हाँ तुम मेरे गुलाम हो। मैंने कहा, मैं घर जाता हूँ, देखूं मेरा क्या कर लेते हो। गया बोला, घर कैसे जाओगे, कोई दिल्ली है? दांव दिया है, दांव लेंगे। मैंने कहा, अच्छा कल मैंने अमरूद खिलाया था, वो लौटा दो। गया बोला, वो तो पेट में चला गया। मैंने कहा, निकालो पेट से, तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद? गया बोला, अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया, मैं तुमसे मांगने ना गया था। मैंने कहा, जब तक मेरा अमरूद ना दोगे मैं दांव ना दूंगा। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है, आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे अमरूद खिलाया होगा। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है, भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो फिर उसे मुझसे दांव लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं, ए मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के पांच वाले थे, जो गया के बाप को भी नसीब ना होंगे। यह सरासर अन्याय था। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दांव देकर जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। मुझे न्याय का बल था, वो अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना चाहता था, वो मुझे जाने ना देता था। मैंने उसे गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी, और गाली ही नहीं एक चांटा जमा दिया। मैंने उसे दांत से काट लिया, उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र का मुकाबला ना कर सका। मैंने तुरंत आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। मैं थानेदार का लड़का एक नीच जात के लौंडे के हाथों पिट गया, ये मुझे उस समय भी अपमानजनक मालूम हुआ, लेकिन घर में किसी से शिकायत ना की। उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की खुशी में मैं ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल दुख ना हुआ। पर पिताजी दुखी थे, वो बड़ी आमदनी की जगह थी। अम्मा जी भी दुखी थी, क्योंकि यहाँ सब चीजें सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से खराब सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूला ना समाता था, लड़कों में जीत उड़ा रहा था। वहाँ ऐसे घर थोड़े ही होते हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊंचा हूँ, और उन्हें जलन महसूस हो रही थी, मानो कह रहे थे, तुम भाग्यवान हो भाई, जाओ हमें तो इसी उजड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी। 20 साल गुजर गए, मैंने इंजीनियरिंग पास की और उसी जिले का दौरा करता हुआ उसी कस्बे में पहुंचा और डाक बंगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर बाल स्मृतियां हृदय में जाग उठी कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। आंखें किसी प्यासे पथिक की भांति बचपन के उन क्रीड़ा स्थलों को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी, पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ परिचित ना था। जहाँ खंडहर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे, जहाँ बरगद का पुराना पेड़ था वहाँ अब एक सुंदर बगीचा था। स्थान की काया पलट हो गई थी। अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान ना होता तो मैं उसे पहचान भी ना सकता। बचपन की संचित और अमर स्मृतियां बाहें खोले अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को अधीर हो रही थी, मगर वो दुनिया बदल गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से लिपट कर रोऊं और कहूं, तुम मुझे भूल गई, मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली जगह में मैंने दो तीन लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखा। एक क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल गया कि मैं एक ऊंचा अफसर हूँ, सहावी ठाट में रोब और अधिकार के आवरण में। जाकर एक लड़के से पूछा, क्यों बेटे यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है? एक लड़के ने गुल्ली डंडा समेट कर सहमे हुए स्वर में कहा, कौन गया? गया चमार? मैंने यूं ही कहा, हाँ हाँ भाई, गया नाम का कोई आदमी है तो शायद भाई हो। उसने कहा हाँ है तो। मैंने कहा जरा उसे बुला सकते हो। लड़का दौड़ता हुआ गया और एक क्षण में एक पांच हाथ वाले काले देव को साथ लेते हुए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊं, पर कुछ सोच कर रह गया। बोला, कहो गया, मुझे पहचानते हो? गया ने झुककर सलाम किया, हाँ मालिक, भला पहचानूंगा क्यों नहीं, आप मजे में तो हो? मैंने कहा बहुत मजे में, तुम अपनी कहो। गया बोला, डिप्टी साहब का साईस हूँ। मैंने पूछा, मतई मोहन दुर्गा सब कहाँ हैं, कुछ खबर है? गया बोला, मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन दोनों डाकिया हो गए हैं, और आप? मैंने कहा मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ। गया बोला, सरकार आप तो पहले ही बड़े जहीन थे। मैंने पूछा, अब कभी गुल्ली डंडा खेलते हो? गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा, जैसे कह रहा हो अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। मैंने कहा, आओ आज हम तुम खेलें, तुम हराना हम हारेंगे, तुम्हारा एक दांव हमारे ऊपर है, वो आज ले लो। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ, वो ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेप ना थी, इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी, उस भीड़ में वो आनंद कहाँ रहेगा, पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर जाकर खेलेंगे और बचपन की उस याद की मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले, साथ में कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था, शायद वो हम दोनों में जो अंतर हो गया था यही सोचने में मगन था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया, सच कहना? गया झेपता हुआ बोला, मैं आपको याद करता हुजूर, किस लायक हूँ, भाग्य में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं तो मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी, तुम्हारा वो डंडा जो तुमने तान कर जमाया था याद है ना? गया ने पछताते हुए कहा, वो लड़कपन था सरकार, उसकी याद ना दिलाओ। मैंने कहा, वाह, वो मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है, तुम्हारे उस डंडे में जो रस था वो तो अब ना आदर सम्मान में पाता हूँ ना धन में। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए, चारों तरफ सन्नाटा है, पश्चिम की ओर कोसों तक भीम ताल फैला हुआ है, जहाँ आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया, चटपट गुल्ली डंडा बन गया, खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली, गुल्ली गया के सामने से निकल गई, उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो, गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह बही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे अपने आप ही आकर बैठ जाती थी, वो दाहिने बाएं कहीं हो गुल्ली उसकी हथेली में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो, नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथों में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो, लेकिन आज गुल्ली को उससे वो प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने हराना शुरू किया, मैं तरह तरह की धांधलेबाजी कर रहा था, अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था, कुछ जाने पर भी डंडा मारे जाता था, हालांकि कायदे के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी, गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वो जरा दूर पर गिर पड़ती तो मैं झपट कर उसे खुद उठा लेता और दोबारा टांड लगाता। गया यह सारी बेईमानियां देख रहा था पर कुछ न बोलता था, जैसे उसे वो सब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था, गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे से आकर लगती थी, उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना, लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं, कभी दाहिने जाती है, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। आध घंटे हराने के बाद एक गुल्ली डंडे में आ लगी, मैंने धांधली की। गुल्ली डंडे में नहीं लगी, बिल्कुल पास से गई, लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। ना लगी होगी, मैंने कहा। डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? गया बोला, नहीं भैया, नहीं लगी होगी। तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल थी कि मैं ऐसा घपला करके जीता बचता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता था। कथा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी, और इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी न हो सका। लेकिन क्यों ना एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं? इसमें हरज ही क्या है? मान गया तो वाह वाह, नहीं तो दो चार हाथ हारना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से छुड़ा लूंगा, फिर कौन दांव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, लग गई लग गई। टंड से बोली, मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा। तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा। गया बोला, टंड से बोली है सरकार। मैंने कहा, और जो किसी ईंट से टकरा गई हो तो? मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। बोला, हाँ किसी ईंट में ही लगी होगी, डंडे में लगते तो इतनी आवाज ना आती। मैंने फिर हराना शुरू कर दिया, लेकिन इतनी प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसीलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दांव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया है भैया, कल रखो। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, ए न जाने कितनी देर हराए, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो। गया बोला, गुल्ली सूझेगी नहीं भैया। मैंने कहा, कुछ परवाह नहीं। गया ने हराना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास न था। उसने दो बार टांड लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच गया। एक मिनट से कम में ही वह दांव खो बैठा। मैंने अपनी हृदय की विशालता का परिचय दिया, कहा, एक दांव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में हुच गए। गया बोला, नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है। मैंने कहा, तुम्हारा अभ्यास छूट गया, कभी खेलते नहीं क्या? गया बोला, खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे ना? जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊंगा। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी, कई मेरे लड़कपन के साथी निकले, अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान ना सका। खेल शुरू हुआ, मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल उसका नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टांड लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती, कल की सी वो झिझक वो हिचकिचाहट वो बेदिली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह हराया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। हारने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की, उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था, गुल्ली जमीन से लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई, युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया था, अगर वो दब ना जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में तो ना था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं था, केवल खेलने का बहाना किया था। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध ना आया, इसलिए कि वो खेल ना रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वो मुझे हराकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ, यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। अब मैं उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, सहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था, ये पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया योग्य हूँ। वो मुझे अपना जोड़ नहीं समझता, मुझे लगा वो बड़ा हो गया है और मैं छोटा हो गया हूँ। धन्यवाद।
कविता, कहानी, बाल रचना, गीत संगीत सुनने के लिए लॉग ऑन करें हिंदयुग्म.com।